एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं एकत्र ज्ञान गोष्ठी। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने, आप कह सकते हैं, हजारों सालों से इंसानी सोच को दिशा दी है, अरस्तु की निकोमाकियन एथिक्स।
हाँ, और ये किताब ना असल में एक बहुत ही बुनियादी पर गहरा सवाल पूछती है, भाई एक अच्छा, एक सार्थक जीवन आखिर जिया कैसे जाए।
बिल्कुल।
और ये सवाल मुझे लगता है आज की भागदौड़ वाली दुनिया में, जहाँ खुशी और सफलता के मायने इतने उलझे हुए से लगते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया
है ना?
एकदम सही कहा अरस्तु, हमें थोड़ा लुक कर, मतलब बाहरी चीजों से हटकर सोचने को मजबूर करते हैं। तो चलिए आज हम अरस्तु के इन विचारों को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि ये जो 2300 साल पहले की बातें हैं वो आज हमारे लिए कितनी कितनी काम की हैं।
हाँ, तो शुरू करते हैं इस महान विचारक से, अरस्तु। इनका समय था 384 से 322 ईसा पूर्व। ये प्लेटो के शिष्य थे, आप जानते ही होंगे, लेकिन इनकी सोच अपने गुरु से काफी काफी अलग थी।
जी
जहां प्लेटो वो आदर्शों की दुनिया, मतलब आइडियल फॉर्म्स में ज्यादा डूबे रहते थे, वहीं अरस्तु का नजरिया एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था, प्रैक्टिकल, अनुभव पर आधारित।
हाँ, और यही बात मेरे ख्याल से उन्हें बहुत खास बनाती है। उन्होंने एथेंस में अपनी पाठशाला खोली, लाइसियम, और वो सिकंदर महान के गुरु भी रहे।
अरे हाँ,
सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक को पढ़ाना, इससे तो यकीनन उन्हें इंसानी फितरत, लीडरशिप और राजनीति की गजब की समझ मिली होगी।
बिल्कुल।
उनका ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी तक ही नहीं था, बायोलॉजी, लॉजिक, पॉलिटिक्स, मतलब कई चीजों पर उनकी पकड़ थी, और शायद इसीलिए वो नैतिकता को इतने प्रैक्टिकल ढंग से देख पाए।
अच्छा, अब आते हैं किताब पर, निकोमैकियन एथिक्स। कहते हैं कि उनके लेक्चर नोट्स थे, शायद उन्होंने अपने बेटे निकोमैकस के लिए तैयार किए थे, इसीलिए ये नाम बढ़ गया।
हाँ, ऐसी मान्यता है।
और ये कोई ऐसी सूखी किताबी फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक तरह की, आप कह सकती हैं, गाइड बुक है। भाई, एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक भरपूर जीवन कैसे जिए।
सही कहा, और ये किताब ना ये मानकर चलती है कि पढ़ने वाले के पास थोड़ा थोड़ा जीवन का अनुभव पहले से है। ये हमें कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है, जैसे सबसे ऊंचा मानवीय लक्ष्य क्या हो सकता है, सद्गुण यानी अच्छे गुण क्या हैं और उन्हें कैसे कैसे डेवलप किया जाए, सही फैसले कैसे लें, और दोस्ती दोस्ती क्यों इतनी जरूरी है।
इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है यूडेमोनिया। अक्सर लोग इसका अनुवाद खुशी कर देते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
हाँ, बहुत ज्यादा। ये मानव उत्कर्ष या फलने फूलने जैसे है, मतलब अपनी जो काबिलियत है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सार्थक जीवन जीना।
अच्छा,
और अरस्तु कहते हैं कि ये यूडेमोनिया पाने के लिए हमें सद्गुणी बनना होगा, वर्चुअस।
और सद्गुण वो कैसे आते हैं?
हाँ, ये दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जन्म से नहीं मिलते बल्कि अच्छी आदतें डालने से विकसित होते हैं, प्रैक्टिस से।
आदत से।
यहीं पर उनका वो मशहूर मध्य मार्ग का सिद्धांत आता है,
डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन।
जी, यानी हर गुण दो अतिवादी छोरों के बीच का संतुलन है, और इस संतुलन को साधने के लिए क्या चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान, जिसे वो फ्रोनेसिस कहते हैं।
ओके, तो ये तो हुआ ओवरव्यू। चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं।
जरूर।
अरस्तु, शुरू करते हैं ये पूछ कर के, हम जो कुछ भी करते हैं किसी न किसी अच्छाई के लिए करते हैं, ना? तो क्या कोई ऐसी परम अच्छाई है, मतलब अल्टीमेट गुड, जिसे हम किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि बस उसी के लिए चाहते हैं?
हाँ, और वही है यूडेमोनिया। अरस्तु का तर्क देखिए, वो पूछते हैं आप पैसा क्यों कमाते हैं? शायद सुरक्षा के लिए, या कुछ खरीदने के लिए? आप शोहरत क्यों चाहते हैं? शायद सम्मान पाने के लिए?
सही।
ये सब क्या है? ये सब साधन है, मीन्स टू एन एंड। लेकिन यूडेमोनिया यानी एक फलता फूलता सार्थक जीवन, वो अपने आप में लक्ष्य है, उसे हम उसी के लिए चाहते हैं।
यहीं पर अरस्तु अपना वो फंक्शन तर्क लाते हैं, है ना?
एर्गोन।
बिल्कुल।
वो कहते हैं हर चीज का एक खास काम होता है, जैसे चाकू का काम काटना है, आग का देखना, तो इंसान का वो खास काम क्या है जो उसे बाकी जीवों से अलग करता है?
सोचने समझने की क्षमता, तर्क।
एकदम सही, तर्क करने की क्षमता। इसीलिए अरस्तु के अनुसार यूडेमोनिया का मतलब है अपनी इस तर्क क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल करना, यानी सद्गुणों के अनुसार जीना, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे जीवन भर चलने वाली एक एक्टिविटी है।
अच्छा, तो अगर यूडेमोनिया सद्गुणों के अनुसार जीना है तो ये सद्गुण आते कहाँ से हैं? आपने कहा आदत से।
हाँ, आदत से, अभ्यास से। अरस्तु का जवाब बड़ा प्रैक्टिकल है। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करके बेहतर बनता है ना,
हाँ
वैसे ही हम अच्छे काम कर करके अच्छे इंसान बनते हैं। न्याय का पालन करते करते न्यायप्रिय, हिम्मत दिखाते दिखाते साहसी। वो कहते हैं कि चरित्र एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार इस्तेमाल करके मजबूत बनाना पड़ता है।
और यहीं पर वो अपना सबसे मशहूर आइडिया लाते हैं, मध्य मार्ग का सिद्धांत।
जी, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। हर नैतिक सद्गुण दो अवगुणों के बीच का संतुलन है, एक कमी का, दूसरा ज्यादती का।
उदाहरण के तौर पर
जैसे साहस को लें, एक तरफ है डरपोकपन, मतलब कायरता, जहां डर बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ है उतावलापन, रैशनेस, जहां बेफिक्री जरूरत से ज्यादा है, बिना सोचे समझे खतरा मोल लेना। साहस इन दोनों के ठीक बीच का सही संतुलन है।
अच्छा,
और उदारता का उदाहरण भी था शायद।
हाँ, उदारता को देखिए, एक तरफ है कंजूसी, स्टिंजीनेस, पैसा खर्ची ना करना, दूसरी तरफ फिजूल खर्ची, प्रोडिगैलिटी, बिना सोचे समझे लुटाना। उदारता इन दोनों के बीच का सही रास्ता है।
लेकिन ये कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं होगा ना, मतलब सबके लिए एक जैसा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अरस्तु ये साफ कहते हैं कि ये कोई गणित का औसत नहीं है, ये हमारे सापेक्ष मध्य है। यानी सही संतुलन क्या है, ये हर व्यक्ति और हालात पर निर्भर करेगा।
बिल्कुल।
और यहीं पे मुझे लगता है वो व्यवहारिक ज्ञान यानी फ्रोनेसिस की भूमिका आती है।
एकदम सही पकड़ा। फ्रोनेसिस वो समझ है, वो विजडम है, जो हमें बताती है कि किसी खास सिचुएशन में वो सही मध्य मार्ग क्या है।
तो ये सिर्फ रूल जानना नहीं है?
नहीं, ये सिर्फ नियमों को जानना नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीके से लागू करने की कला है। अरस्तु तो यहाँ तक कहते हैं कि बिना फ्रोनेसिस के कोई सचमुच सद्गुणी हो ही नहीं सकता।
अच्छा।
और बिना नैतिक सद्गुणों के फ्रोनेसिस भी विकसित नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं।
सोचिए जरा कितना गहरा विचार है ये। मतलब अच्छा इंसान होने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत रखना ही काफी नहीं है, सही समझ और सही फैसले लेने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। दिल और दिमाग दोनों का संतुलन चाहिए।
बिल्कुल। और अरस्तु न्याय, जस्टिस पर भी बहुत जोर देते हैं। उसे वो पूर्ण सद्गुण कहते हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से है। वो दो तरह के न्याय की बात करते हैं। पहला, वितरणात्मक न्याय, यानी समाज में चीजों का, सम्मान का, अवसरों का बंटवारा कैसे हो, योग्यता के अनुसार।
ठीक है।
हाँ,
जैसे किसी कितना मिलना चाहिए।
जी। और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, मतलब अगर कोई अन्याय हुआ है, किसी ने किसी का हक छीना है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, संतुलन कैसे वापस लाया जाए। ये दोनों ही एक अच्छे समाज के लिए बेहद जरूरी हैं।
अरस्तु एक और बड़ी दिलचस्प मानवीय पहेली पर भी बात करते हैं, अक्रैसिया, मतलब इच्छा शक्ति की कमजोरी।
हाँ, ये हम सबने महसूस किया होगा।
बिल्कुल। पता है कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है, पर अलार्म बजता है और हम चादर खींच लेते हैं, या जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं पर कर बैठते हैं।
जी।
अरस्तु कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस खास पल में हमारी कोई तीव्र इच्छा या भावना, वो हमारे सही ज्ञान पर, हमारी समझ पर हावी हो जाती है, उसे धुंधला कर देती है।
मतलब जानना कि क्या सही है और उसे करना, इन दोनों में फासला हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन अरस्तु सिर्फ समस्याओं पर ही बात नहीं करते, वो समाधान भी सुझाते हैं। और उनके हिसाब से एक अच्छा फलता फूलता जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है दोस्ती, फिलिया। वो दोस्ती पर दो पूरी किताबें लिखते हैं।
दो किताबें दोस्ती पर, वाह।
जी हाँ, वो कहते हैं कि दोस्ती तीन तरह की हो सकती है। पहली, जो सिर्फ फायदे पर आधारित हो, जैसे बिजनेस वाले रिश्ते,
मतलब कि यारी।
हाँ, कह सकते हैं। दूसरी, जो मौज मस्ती या आनंद पर आधारित हो, जैसे साथ घूमने फिरने वाले दोस्त। ये दोनों ठीक हैं अपनी जगह पर ये टिकती नहीं है ज्यादातर। सबसे ऊंची और सबसे सच्ची दोस्ती वो है जो अच्छाई या सद्गुण पर आधारित हो। इसे वो पूर्ण मित्रता, परफेक्ट फ्रेंडशिप कहते हैं।
और इसमें क्या खास है?
इसमें दोस्त एक दूसरे के अच्छे चरित्र की, उनके गुणों की कद्र करते हैं। वो एक दूसरे की भलाई चाहते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं।
वाह।
और ये यूडेमोनिया के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, सच्चे दोस्त हमें आईना दिखाते हैं, मुश्किल में सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
किताब के आखिर में अरस्तु फिर से यूडेमोनिया पर लौटते हैं और वो पूछते हैं कि इंसान के लिए सबसे ऊंचा, सबसे आदर्श जीवन कौन सा है।
हाँ, और उनका जवाब थोड़ा शायद आज के जमाने में चौंकाने वाला लगे। वो कहते हैं चिंतनशील जीवन, थियोरिया।
मतलब
दार्शनिक की तरह ज्ञान और सत्य की खोज में लगा जीवन, कंटेम्पलेटिव लाइफ।
ओह,
वो मानते हैं कि ये सबसे उत्तम गतिविधि है क्योंकि इसमें इंसान अपनी सबसे बड़ी खूबी यानी तर्क का सबसे शुद्ध रूप में इस्तेमाल करता है। ये सबसे आत्मनिर्भर भी है।
लेकिन
वो ये भी समझते हैं कि ये जीवन शायद सबके लिए संभव ना हो, या शायद सब ये न चाहें। इसलिए नैतिक सद्गुणों से भरा समाज में सक्रिय जीवन जीना भी बहुत मूल्यवान है। वो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
और यहीं वो नैतिकता को राजनीति से जोड़ते हैं, है ना?
बिल्कुल। एक अच्छा समाज, अच्छे कानून, ये सब लोगों को सद्गुणी बनने में मदद करते हैं। तो मतलब अच्छा इंसान बनना सिर्फ आपकी निजी जिम्मेदारी नहीं है, समाज का, आपकी कम्युनिटी का भी इसमें एक रोल है।
वाह, तो ये थे अरस्तु के कुछ मुख्य और मुझे लगता है बहुत ही गहरे विचार। अगर हम इन्हें थोड़ा समेटने की कोशिश करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं।
जी।
पहली और शायद सबसे जरूरी कि यूडेमोनिया सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है, ये अच्छा जीवन जीना और अच्छा करना है, है ना? जैसा अरस्तु कहते हैं, सुख आत्मा की सर्वोत्तम और सबसे पूर्ण सद्गुण के अनुसार गतिविधि है। मतलब सुख कुछ ऐसा नहीं जो हमें बैठे बिठाए मिल जाता, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम उत्कृष्टता से करते हैं। एक्टिविटी है ये।
दूसरी बड़ी बात जो मुझे बहुत पसंद है, चरित्र आदत से बनता है, अभ्यास से। वो जो एक मशहूर कहावत है जो अरस्तु के विचारों पर आधारित है, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब कोई एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। ये हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनाव कितने मायने रखते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं।
हाँ, और तीसरा अहम संदेश है वो संतुलन का, मध्य मार्ग का सिद्धांत। किसी भी चीज की अति बुरी है। अरस्तु का एक और बेहतरीन उद्धरण है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, ये आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, ये आसान नहीं है।
क्या बात है।
ये दिखाता है कि सद्गुण भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही ढंग से, समझदारी से व्यक्त करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? वो व्यावहारिक ज्ञान, फ्रोनेसिस।
बिल्कुल। और चौथा यही कि अच्छाई के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है, वो व्यवहारिक समझ, फ्रोनेसिस भी उतनी ही जरूरी है। सही फैसले लेने की क्षमता, हालात को ठीक से समझने की काबिलियत, ये सब एक गुणी जीवन के लिए अनिवार्य है। दिल और दिमाग दोनों का तालमेल चाहिए।
और आखिर में कि हम अकेले टापू नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं। दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव हमारे फलने फूलने के लिए जरूरी है। जैसा अरस्तु ने कहा, मित्रों के बिना कोई जीना नहीं चाहेगा, भले ही उसके पास अन्य सभी अच्छी चीजें हों। सच्ची दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है।
तो इन हजारों साल पुराने विचारों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक तरीका तो मुझे लगता है कि हम मध्य मार्ग को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं किसी व्यवहार में बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं कर रही? जैसे, क्या मेरा आत्मविश्वास कहीं अहंकार तो नहीं बन रहा, या मेरी विनम्रता कहीं दब्बूपन तो नहीं? क्या मैं जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही हूँ या कंजूसी कर रही हूँ? ये आत्म मूल्यांकन हमें संतुलन खोजने में मदद कर सकता है।
और वो आदत बनाने वाली बात, हम छोटी छोटी अच्छी आदतें डालने की कोशिश कर सकते हैं रोज। जैसे रोज किसी की मदद करने का एक छोटा सा इरादा करना या सच बोलने का अभ्यास करना। धीरे धीरे ये आदतें हमारे चरित्र का हिस्सा बन सकती हैं।
हाँ।
और प्रोफेशनल लाइफ में भी फ्रोनेसिस बहुत काम आ सकता है। जब कोई मुश्किल नैतिक दुविधा सामने आए तो सिर्फ नियमों को देखने के बजाय उस स्थिति की बारीकियों को समझना, लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना, लंबे समय के नतीजों के बारे में विचार करना, यही तो है व्यावहारिक ज्ञान।
रिश्तों के मामले में भी ये लागू होता है। हम सोच सकते हैं कि हमारी दोस्ती किस तरह की है, क्या वो सिर्फ फायदे या मजे पर टिकी है, या क्या हम ऐसी दोस्ती बनाने पर ध्यान दे सकते हैं जो आपसी सम्मान, भरोसे और एक दूसरे को बेहतर बनाने की चाहत पर आधारित हो, क्योंकि वही ज्यादा गहरी और टिकाऊ होंगी।
और अगर आप माता पिता या शिक्षक हैं तो अरस्तु की सीख बहुत काम की है। बच्चों को सिर्फ नियम रटाने के बजाय उन्हें अच्छे व्यवहार का अभ्यास करने का मौका दें। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो गलतियां करके सीख सकें और अच्छी आदतें धीरे धीरे विकसित कर सकें।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, अगर एक चीज कहनी हो? मेरे लिए तो शायद यही कि अच्छा जीवन कोई लॉटरी नहीं है जो बस लग जाए, इसे मेहनत और समझदारी से बनाना पड़ता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। खुशी कहीं बाहर नहीं ढूंढनी, वो हमारे अपने कामों और हमारे चरित्र में ही छुपी है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आप कौन हैं। ये इस बात का आधार है कि आप क्या करते हैं। अगर हम खुद को बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान दें, मतलब ज्यादा समझदार बनने पर, ज्यादा संतुलित, ज्यादा न्यायप्रिय, तो अच्छे काम शायद अपने आप ज्यादा स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। अरस्तु की सोच आसान नहीं है, पर यह उम्मीद जगाती है कि कोशिश करने से हम सब एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन जी सकते हैं।
चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने रोज के कामों को, अपने लक्ष्यों को सिर्फ मुझे अभी क्या अच्छा लगता है या मेरे लिए क्या फायदेमंद है के पैमाने से न देखकर इस नजरिए से देखें कि कौन सा काम मुझे एक बेहतर इंसान बनने और सचमुच फलने फूलने, यूडेमोनिया पाने में मदद करेगा, तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क आ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।